ओम शांति। वैसा देखा जाए तो ब्राह्मण जीवन ये समाधानी जीवन है, ना कि समस्याओं का जीवन। कलयुग समस्या का युग है और संगम युग ये समाधान का युग है। हम है ही समाधान के युग में, तो हमारे आगे समस्या क्या होगी? समस्या को समस्या समझेंगे तो समस्या लगेगी, समस्या को खेल समझेंगे तो मनोरंजन लगेगा। हम बाबा के बच्चे बहुत लाड कोड से पलते हैं, इसीलिए छोटी छोटी बात कभी कभी किसी को बहुत बड़ी लगती। लौकिक में भी कहते हैं ना, बच्चे को बहुत प्यार किया जाएगा तो बिगड़ जाता है। तो मैं कहती हूँ यहाँ पर बच्चों को बाबा बहुत प्यार करता है तो कभी कभी बिगड़ जाते हैं, नखरे कर कहते हैं हमारे को बड़ा सहन करना पड़ता है, हमको तो बड़ा सुनना पड़ता है, हमको तो बड़ा सामना करना पड़ता है। हमको चाहिए विश्व की बादशाही, परंतु हमको करना कुछ नहीं। ये कैसा होगा आप बताइए? जबकि हमें विश्व की बादशाही चाहिए, तो विश्व की बादशाही लेने के लिए कुछ तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कुछ समाना पड़ेगा, कुछ समेटना पड़ेगा, कुछ सामना करना पड़ेगा, कभी झुकना पड़ेगा, कभी झुकाना पड़ेगा। तो वास्तव में देखा जावे, मेरा तो अनुभव ये कहता है कि आज करीबन हमारे को 55-56 बरस हो गए, पर हमारे को कोई समस्या नहीं है। समस्या है ही नहीं, परंतु हम साइड सीन को समस्या समझ देते हैं और घबरा जाते हैं। जिसको आप समस्या कहते हो, जिसको परीक्षाएं कहते हो, ये सब साइड सीन्स हैं। आज किसी को भी कहां एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है। आप अभी घर से यहां आबू में ही आए, तो जो भी जाता है टिकट लेने को, कहां का भी टिकट लेवे, प्लेन का लेवे, ट्रेन का लेवे, बस का लेवे, सब यही कहते हैं मेरे को ना जरा विंडो सीट देना। दूसरी सीट नहीं पसंद करते, विंडो सीट क्यों पसंद करते? क्योंकि साइड सीन देखने को मिलती है। तो बाबा कहता है जब वो साइड सीन देखने में तुम्हें मजा आता है, मनोरंजन लगता है, तो ये जो समस्याएं हैं ये सब साइड सीन है। इनको अगर आप साइड सीन समझ करके देखेंगे, क्योंकि साइड सीन ये कभी भी खड़ी नहीं रहती है, चलती रहती है। सब दिन होता नहीं एक समान, जो समय चलता है वो आगे बढ़ता जाता है, हम उससे भी आगे चले जाते हैं। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को संगम युग पर समस्या का समाधान करने के लिए रखा है, ना कि हमारे जीवन में समस्याएं आवे इसलिए रख। अभी आप मेरे को बताइए, एक दुकान है, उस दुकान के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है टीवी रिपेयर का दुकान, वहां पर टीवी रिपेयर होती है। उस दुकानदार के पास कौन सी टीवी आएगी? नई टीवी आएगी, जो खराब होगी वो ही आएगी ना। और हमारे मस्तक के ऊपर लिखा हुआ है समस्या समाधान, तो हमारे पास क्या आएगा? क्या आएगा? समस्या आएगी नहीं आएगी? अभी वो व्यक्ति चिल्लाना चालू कर देवे, ये क्या है, सारा दिन टूटी फूटी टीवी आती रहती है, इसके पीछे इतनी मेहनत करनी लग पड़ती है। अरे जब भी तुम्हारा धंधा ही ये है टीवी रिपेयर का तो तुमको जरूर क्या होगी, टूटी फूटी मिलेगी। तो हमारा धंधा ही जब है सारी सृष्टि की समस्याएं हल करना, तो हमारे पास क्या आएगी, समस्याएं आएगी ना। तो उसको तो हमें खुशी से करना चाहिए कि हमारा धंधा बहुत जोर से चल रहा है, वाह वेरी गुड। वैसे भी धंधा जोर से चलता है तो क्या होता है, खुश होते हैं ना, भाई हमारा धंधा बहुत अच्छा है, औरों का धंधा भले कैसा भी हो। तो वास्तव में देखा जावे, हम जब बाबा के बनते हैं तो माया से चैलेंज करते हैं कि अभी तू आकर देख, तेरी दाल हमारे आगे गलने वाली नहीं है अभी, क्योंकि अब हम ईश्वर के बन गए। परंतु माया भी कोई इतनी साधी सूधी नहीं है जो हमने बोल दिया और उसने हमको छोड़ दिया, क्योंकि हम उसके बड़े पुराने ग्राहक हैं। जब पुराने ग्राहक होते हैं ना तो कोई भी दुकानदार उसको छोड़ना नहीं चाहता है। अगर वो देखेगा कि मेरा ग्राहक किसी दूसरी दुकान पर जाता है तो उसको बुला रही, इधर आ, उधर क्यों जाता है तू, मेरे को छोड़ के इतने वर्षों से मेरा ग्राहक तू उधर कैसा क्या जाता है, तुम मेरे को पैसा नहीं देना, हर्जा नहीं, ले जा माल ले जा बाद में देना, वो यहां तक भी तैयार हो जाता है। तो हम जो 2500 बरस से माया से माल खरीद करते आए, कभी काम तो कभी क्रोध तो कभी जोश तो कभी मोह, अभी उसको छोड़ के हमने ईश्वर से ज्ञान रतन सुख शांति लेना चालू कर दिया, वो कैसा सहन करेगी माया बताओ। तो वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश जरूर करेगी, और वो पूरी कोशिश करती है, 20 नाखून का जोर लगा के कोशिश करती है। पर हमें खुद को डिसाइड करना है कि मुझे अभी कौन सा सौदा करना है। माया के साथ हमने सौदा करके देखा तो हमारा ताज गया, तखत गया, तिलक गया, सब कुछ गया। अभी हम ईश्वर के साथ सौदा करते हैं तो फिर जरूर माया सामने आएगी। पर बाबा कहता है कि माया तुम्हारे को हराने के लिए नहीं आती है, माया तुम्हारे को नमस्कार करने के लिए आती है, माया तुम्हारे से छुट्टी लेने के लिए आती है। आज देखो हम ट्रेन में जाते हैं या कहां भी किसी व्हीकल में जाते हैं, रास्ते में कितने हैं हम सफर मिलते हैं, कहां कोई 1 घंटे की दूरी पर उतरता है, जिसका जब भी टिकट पूरा होता है स्टेशन आता है उतर जाते हैं, पर जाते जाते ये जरूर नमस्कार करके जाते हैं, अच्छा हम जा रहे हैं, हमारा स्टेशन आ रहा। अभी वो 1 घंटा हम साथ में बैठते तो भी हमारा आपस में प्यार हो जाता है, स्नेह हो जाता है, एक दो से छुट्टी लेके जाते हैं। और जो हमारे से 2500 बरस रही वो हमारे से छुट्टी नहीं लेगी। पर हमारा काम ये है उसकी खातिरी हम नहीं करें, उसको हम छुट्टी दे देवे। ऐसा नहीं माया आवे और हम उसको चाय पानी पिलाने के लिए बिठा देवे, आ जा तू बैठ जा, हाँ तो क्या करेगी, जाएगी बैठ जाएगी ना पैर पसार की। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे माया से घबराने की जरूरत नहीं है, समस्याओं से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम पूजनीय मूर्ति बन रहे। बाबा ने आज भी कहा ना, देखो तुम मेरे से भी कितने, तुमको बाबा ने कितना ऊंचा बनाया, कितना कितनी तुम्हारा सम्मान होता है, सारे कल्प में सम्मान होता है, आधा कल्प तो तुम्हारा राजपद का सम्मान है, आधा कल्प तुम्हारा पूज्य पद का सम्मान। तो जब ही बाबा ने हमारे को पूज्य देवी देवता बनाया है, हमको पूज्य देवी या देवता बनना है, तो हथौड़ी के वार तो हमको सहन करने ही पड़ेगी, उसके बगैर मूर्ति नहीं बन सकती है। अगर नहीं सहन करेंगे तो मूर्ति नहीं बनेगी। एक मिसाल बताते हैं बोला एक कारागीर था, वो मूर्ति बना रहा था मंदिर के लिए, श्री कृष्ण की मूर्ति। तो उसने एक हथौड़ी को क्या किया, हथौड़ी से एक मार्बल को छन्नी से ठोक रहा था तो टूट गया। टूट गया तो क्या करते है? टूट जाएगा तो उसको खंडित मूर्ति कभी काम में नहीं आती है, उसने छोड़ दिया। फिर दूसरा पत्थर लिया उसको ठोकने लगा, उसको थोड़ा क्रैक आ गया, उसको भी रिजेक्ट कर दिया। फिर तीसरा पत्थर लिया, फिर उसको ठोकना चालू किया, ठोक ठोक के उसको एक बड़ी सुंदर मूर्ति बना दी। वो मूर्ति मंदिर में स्थापित कर दिया। वो जो मंदिर का ट्रस्टी था वो आया, उसने देखा अरे मार्बल इतना महंगा और ये इसने ऐसा तोड़ दिया, क्रैक कर दिया, तो अभी फेंकेंगे थोड़े ही मार्बल। तो जो ज्यादा टूटा हुआ था उसको क्या किया, जो चढ़ने की सीढ़ियां है ना उसके ऊपर लगा दिया। जो थोड़ा क्रैक आया हुआ था उसको क्या किया, उसको मंदिर में पिलर बना दिया, बीच में पिलर होते ना तो उसको पिलर को लगा दिया। तो जो भी भगत आते थे, जो टूटा हुआ सीढ़ी के ऊपर लगा था उसके सिर के ऊपर पैर रख के पीछे चढ़ते थे। और फिर श्री कृष्ण का दर्शन करके मन प्रसन्न करके जब उनको प्रसाद मिलता था वो खाके हाथ जाके उस पिलर को पहुंचते थे जहां वो क्रैक वाला पिलर को लगाया हुआ था मार्ग। अभी देखो उसने थोड़ा अगर सहन नहीं किया तो उसको एक तो सारा जन्म उसके सिर के ऊपर पैर रखना उसको कबूल करना पड़ा, नहीं तो झूठे हाथ लोग पहुंच रहे, और वो ही उस पत्थर ने सहन कर लिया तो मूर्ति बन गई। तो हम लोगों को भी जब मूर्ति बनना है पूजनीय तो उसके लिए हमें सहन जरूर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम धर्म की स्थापना करते हैं। आप धर्म स्थापकों की अगर जीवन कहानी देखेंगे, किसी भी धर्म स्थापक के धर्म स्थापन की जीवन कहानी में आपको यही मिलेगा, दो विशेषताएं, एक तो पवित्रता और दूसरा सहनशीलता। तो वो सिर्फ धर्म की स्थापना करते इसलिए उनको इतना सहन करना पड़ता है। हम तो धर्म और राज दोनों भी स्थापन करते हैं तो हमको तो उससे ज्यादा सहन करना पड़े। इसीलिए बाबा कहता है चिल्लाओ नहीं चलाओ, कोई भी बात होवे तो उसको चलाना सीख जाओ, चिल्लाना बंद करो। चिल्लाते अज्ञानी है, ज्ञानी चिल्लाते नहीं। तभी हमारे ब्राह्मण जीवन में जिसको लोग समस्या समझते हैं, वो समस्या क्या है? सबसे पहले समस्या बन के कौन खड़ा रहता है? जो आपके प्रियजन है, जिसको आप सगे समझते हो, सगे संबंधी समझते हो, पहले पहले तो वही दुश्मन बनते, वही आगे बढ़ने नहीं देते हैं, क्योंकि उनको लोक लाज कुल की मर्यादा ठहराती है, पकड़ती है, वो आगे नहीं बढ़ने देंगे। लोग क्या कहेंगे, लोगों की परवाह करते हैं। इसीलिए जो ईश्वरीय मार्ग पर चलते हैं उनको वो लोग क्या करते हैं, उनके ऊपर सितम करते, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। अभी तो कुछ नहीं, परंतु आप आपको खुद को मालूम है कि जब यज्ञ की स्थापना हुई उस समय पर कितने अत्याचार हुए, एकदम नई बात थी और उस समय कोई भी नहीं था, अकेला बाबा था। बाबा ने सब समस्याओं का कैसा सामना किया, सारा समाज विरुद्ध हो गया, घर वालों का पहले साथ नहीं मिला, घर वाले विरुद्ध हो गए, समाज तो विरुद्ध हुआ, देश जो शहर है वो विरुद्ध हो गया, देश विरुद्ध हो गया, फॉरेन तक भी विरुद्ध हो, अमेरिका में भी पेपर में पढ़ा कि एक सिंध हैदराबाद में जवाहरी निकला है उसको 500 रानियां चाहिए। वो तो समझते श्री कृष्ण को इतनी रानियां थी, इसको इतनी रानियां चाहिए, अभी इतनी मिली है इतनी और चाहिए। बाबा एंजॉय करते थे सुन के। जो सिंध के लोग थे बाबा के ऊपर अत्याचार करते थे, आने वालों के ऊपर अत्याचार करते थे, टीका टिप्पणी करते थे, उनको बंधन डालते थे, यहाँ तक कि लाखा भवन को आग भी लगा दिया था जहां रहे। उस भवन का नाम था लकी राज भवन। तो शास्त्रों में है ना कि कौरवों ने लाखा भवन को आग लगाई, तो ये लाखा भवन था उसको आग लगा दिया था। परंतु बाबा कभी हलचल में नहीं आए। कभी कभी ये सिंध वाले गमसान कर करके थक जाते थे, चुप हो जाते थे। बाबा कहता था क्या हो गया, कुछ करते नहीं आजकल। और ही बाबा ऐसा पूछते थे। तभी हमारे बाप में इतनी ताकत है तो हमारे में कितनी होनी चाहिए। तो अभी भी हम देखते हैं कि हमारे जो भाई बहने हैं, आज बाबा ने बांदे लिए और बांदेलों को याद किया यहाँ कि सबसे पहला नंबर योग तो उनका लगता है, फर्स्ट नंबर उनका है। बाबा देखो कितना सम्मान देता है, फर्स्ट नंबर दे देता है। तो ये जो भी बंधन डालने वाले हैं, ये हमारी लगन को बढ़ाने वाले। क्योंकि ऐसा होता है, मनुष्य को जिस काम के लिए मना किया जावे ना, उसकी इच्छा होती है वही करने का। जिसको शुगर होती है ना, उसको मीठा खाना अच्छा लगता है। डॉक्टर बोलता रहेगा ये छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जो मना करेंगे वो करने की इच्छा होती है। और बांदेलियां अनुभव सुनाती है, हम जब बांधे लेते ना तभी बहुत योग लगता था, अभी इतना नहीं लगता है। तभी बहुत खेंच होती थी, क्यों अभी चूटे ले होगी। तो बंधन तो अच्छे है ना जो ज्यादा योग लगे उससे। तो ये जो समस्या है, समस्या नहीं है पर वास्तव में हमारे को आगे बढ़ाने का साधन। तो सबसे पहले तो ये सामने खड़ा होता है जो समाज विरोध करता है। परंतु बाबा ने क्या कहा, तुम्हें महारथी बनना है। महारथी क्यों कहा? घोड़ेस्वार ने कहा, प्यादे ने कहा। महारथी की क्या विशेषता होती है? आपने हाथी की विशेषता देखी? रास्ते पर कितना शान से चलता है। कोई सामने से आते हैं, उसको कोई फ्रूट खिला रहा है, कोई उसके मथे पर तिलक भी लगा रहा, पूजा करते उसकी। गांव में जाके देखो आप, कोई उसको तिलक लगा रहा, कोई फूल चढ़ा रहा उसके ऊपर। उसको कोई परवाह नहीं है, खा लेता है, आगे बढ़ता है। पैसा मिलता है, इतना ईमानदार होता है, पैसा मिलता है वो जो महारत होता है उसको देता है, खुद के पास नहीं रखता। और उसके पीछे वो आगे आगे चलता है। और गांव में आप देखेंगे तो बड़ा मजा होता है, जब भी देखते इतना बड़ा हाथी रास्ते पर से जा रहा है तो गलियों में से कुत्ते निकल के आते हैं, भो 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 करते हैं कि तू हमारे इतना बड़ा प्राणी हमारे गांव में कैसा आ गया। इतने कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं, जैसा पीछे बारात चलती है उसके बैंड बज रहा, वो समझता है मेरे पीछे बैंड बज रहा, आराम से चलता रहता है। वो कुत्ते भौंकते हैं तो भी वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है। और उसकी कोई पूजा करता है, उसको कोई सम्मान देता है तो उनको भी नहीं देख, उनके लिए भी नहीं ठहरता। तो बाबा ने हमें ये सिखाया, अगर तुम्हारी कोई महिमा करे तो भी तुमको ठहरने की जरूरत नहीं है, फूल जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी कोई निंदा करते रहे, पीछे से भौंकते रहे, तुम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दो, तुम आगे बढ़ते जाओ। इसीलिए तुम महारथी है। तो जब ऐसी स्थिति धारण कर लेते हैं तो समाज क्या कर सकता हमारे। जब हमने पक्का दृढ़ संकल्प कर लिया कि हम ईश्वर के हैं, अरे आज किसी गधे या गधी से दिल लगती है तो देखो कितना सहन करते हैं। और यहां तो हम तो हमारी दिल तो ईश्वर से लगी हुई है, तो हमने अगर थोड़ा सहन कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हुई। तो इसीलिए आप बात को बड़ा नहीं करो, समस्या नहीं समझो, आप समझो ये हमारे को आगे बढ़ाने के लिए सीढ़ी। तो एक तो ये बात होती है, समाज की बात होती है, रिश्तेदारों की बात होती है, परंतु हमें सबको संतुष्ट करके आगे बढ़ते जाना है। जो अपने ईश्वरीय नियम है उसके ऊपर हमको चलते जाना है। आवाजों की तरफ कभी भी ध्यान नहीं देना, आप शान से चलो, जैसा हाथी चलता है वैसा शान से चलते रहो। आखिर वो जो गालियां देने वाले हैं ना, वो आपकी पूजा करेंगे, वो आपकी आरती उतारेंगे, पर पहले गाली तो जरूर देंगे, क्योंकि समाज के विरुद्ध करते हम। वहां तो थोड़ा बड़ा हो गया, लड़की बड़ी हो गई, लड़का बड़ा हो गया, तो शादी के बगैर दूसरी बात ही नहीं करते हैं। और उसके विरुद्ध करेंगे तो जरूर क्या करेंगे, लोग सामना तो करेंगे साकार बाबा को। शुरू शुरू में सब उन्होंने प्रयत्न करके देखा, फिर लास्ट में क्या किया, एक बारी सिंध में पंच, पहले पंच को परमेश्वर माना जाता था, तो पंच मिलकर के बाबा के पास आए। बाबा तो बहुत खातिरी करता था, बाबा को तो सभी देव मानुष समझते थे कि ये देवता है। वो इतना बाबा की नेचर अच्छी थी, सबको सहयोग देने वाला, सबके ऊपर उपकार करने वाला। तो पंच बाबा के पास मिल के आए कि हम इनको समझा के देखते। तो आए तो बाबा ने उनकी बहुत खातिरी किया, मेहमान निवाजी किया। फिर उन्होंने कहा, दादा आप ये देखो, आप जैसा मनुष्य तो इस दुनिया में कोई है नहीं, आप इतने अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं, और आपकी वाणी में कितनी ताकत है, आप क्या गीता सुनाते हैं, लोग मोहित हो जाते हैं उसके ऊपर। परंतु दादा आप एक बात करो ना, आप सिर्फ ये जो कन्याएं माताएं हैं ना, इनको आप विकारों के लिए मना नहीं करो, छूट दे दो आप, फालतू आपकी बदनामी हो रही है, पवित्रता के लिए आप कुछ नहीं बोलो उनको। बाबा सुनता रहा। फिर बाबा ने कहा, देखो तुम गीता पढ़ते हो ना, सुनते हो ना, गीता में क्या है, क्या भगवान वाच है, काम महाशत्रु है। अभी भगवान कहता है काम महाशत्रु है, आप बोलते हो उस काम को तुम मित्र बनाओ, तो मैं किसका मानूं ये बताओ ना। मैं भगवान के महावाक्य उनको सुनाऊं, भगवान का मानूं या तुम्हारा मानूं? तो बेचारे क्या जवाब देंगे बताओ, चुप करके चले गए। मतलब बाबा सिद्धांतों के ऊपर इतना पक्का था कि जो बाबा ने बोला हुआ है उसके लिए नई बात है तो सहन तो करना ही पड़ता है, उसमें घबराने की क्या बात। अगर घबरा गए तो गए मरे, अगर तुम निडर हो, क्योंकि बाबा ने हमें रूहानी सोल्जर बनाया, हमारी माया के साथ फाइट चलती है। तो सोल्जर का मेन जो गुण होता है वो क्या होती है, निर्भयता। आज देखो योद्धे के पास कितने भी रिफाइन अस्त्र शस्त्र हो गए, अगर वो युद्ध के मैदान में डर जाएगा उसके हाथ के अस्त्र शस्त्र गिर जाएंगे। अगर उसमें निर्भयता है तो उसकी विजय। तो उसी प्रकार अगर निर्भय होकर के मुकाबला करते हैं तो हमारा निश्चय और हमारी निर्भयता जो है वो हमें विजय प्राप्त कराती। ये तो हो गई बाहर की बात, बाहर की समस्या हो गई। अभी दूसरी जो समस्या आती है वो अपने विचारों की, अपने संस्कारों की होती है। ये जो बंधन बंधन बोलते हैं ना, ये बंधन डालते हैं बंधन, सबसे बड़ा बंधन हमारे मन का बंधन। मन ही हमको बांधता है, मन ही उल्टे सुलटे विचार लाता है, तूफान लाता है। ब्राह्मणों में बड़ी समस्या व्यर्थ संकल्पों की समस्या। ये जो व्यर्थ संकल्पों की समस्या है इसके ऊपर हमें विजय प्राप्त करने की आवश्यकता, और व्यर्थ संकल्पों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हमारे को बाबा ने बहुत सारी युक्तियां बताई। व्यर्थ संकल्प किस बात के चलते हैं, जो बीत गया भूतकाल, भूतकाल के लिए सोचते हैं, व्यर्थ सोचते हैं, ऐसा नहीं होता था, ऐसा होता था तो, ऐसा नहीं करते थे वैसा करते थे तो। जिसको ड्रामा की समझ नहीं है उसके व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को बताया है, तुम सवेरे उठते ही अपने मस्तक के ऊपर तीन बिंदियां लगा लो, आप बाप और ड्रामा, बस। जिसको ड्रामा पका है कि ये ड्रामा कल्याणकारी ड्रामा है, तो वो बीती का कभी चिंतन नहीं करता। बात छोटी होती है, वो बात बीत जाती है, परंतु उसको याद कर करके और उसको लंबा करते रहते हैं। बात रबड़ के माफक होती है, आप रबड़ को जितना तानेंगे ना उतनी बड़ी हो जाती। नहीं, आप उसको छोड़ दो, देखो छोटी हो जाएगी। रबड़ बैंड हाथ में लेके करके देखो। तो इसीलिए अगर कोई भी बात होती है, कोई भी परिस्थिति आती है, परिस्थिति के सामने खड़े होके देखो। नहीं, आप सामने खड़े होके देखेंगे ना आप घबरा जाएंगे, परंतु बाबा ने हमें युक्ति बताई है। कोई परिस्थिति आती है और आएगी जरूर। अभी देखो, साकार बाबा ने इतनी परिस्थितियों का सामना किया, आप और हम उसी रास्ते पर से जा रहे हैं। जब हमारा रास्ता ही वो है, जो बाबा का रास्ता है वही हमारा रास्ता है, नया रास्ता तो नहीं है। तो बाबा को जो जो रास्ते में साइड सीन दिखाई पड़ी, जो परिस्थितियां सहन करनी पड़ी, जो बातें सहन करनी पड़ी, वो आपको और मेरे को भी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि रास्ता ही वो है। आप यहां से अगर बाहर गेट तक जाएंगे तो मैं जो देखेगी वो आपको भी दिखाई पड़ेगा, वही झाड़ दिखाई पड़ेगी, वही पान दिखाई पड़ेगी। तो बाबा ने उसको डट के सामना किया ना, उसका हमारा काम है उसका सामना करना। तो जब भी हमें ड्रामा याद रहता है, जो भी हो गया फुल स्टॉप, जो बीत जाता है उसको भूतकाल कहा जाता है। भूतकाल का मतलब क्या हो गया? जैसा भूत को कहते हैं, भूत अगर पीछे लगे ना उसको तुम याद नहीं करना, भूत को कभी याद नहीं करना, वो तुमको पकड़ेगा जरूर। तो वैसा ही भूतकाल को याद करेंगे ना तो वो भूतकाल छोड़ेगा नहीं तुम्हारे को, वो भूत तुम्हारे पीछे लगा ही रहेगा। इसलिए जो भी हो जाता है बाबा कहता है उसको फुल स्टॉप लगाओ। जो हो गया, आज भी बाबा ने कहा ना, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो और भी अच्छा होगा, क्योंकि दो बातों के कारण व्यर्थ संकल्प चलते हैं, एक बीती के कारण चलते हैं और एक आने वाले समय के कारण चलते हैं। तो बीती सो बीती ये दुनिया नहीं जीती, आप उसको फुल स्टॉप लगा लो, और आने वाला जो समय है उसमें हमारा कल्याण ही होने वाला है, क्योंकि हमारा साथी स्वयं भगवान। तो जब हमारा साथी स्वयं भगवान है तो हमारा कल्याण कैसा हो सकता, हमारा नुकसान कैसा हो सकता? आप चिंता काहे की करते हैं? चिंता इसीलिए करते हैं क्योंकि समझते हैं कि मैं करता हूं। बाबा ने आज कहा ना, गृहस्थी नहीं है तुम, ट्रस्टी। तुम मेरे को तेरे में परिवर्तन कर डालो, क्योंकि समस्या और माया का आने का दो ही दरवाजा, एक मैं और दूसरा मेरा। दरवाजा बंद करो ना, दरवाजा खुला करके बैठे और कहते हो कि ये चोर आते आएगा नहीं तो क्या करेगा? आप उसको खुद ही वेलकम कर रहे हैं कि इधर आ, उधर काहे को जाता है? ए बैल मार मेरे को, दूसरी जगह से नहीं जाना। तो आप बंद कर डालो, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर डालो। ठगी नहीं करना कि मेरा भी मेरा और तेरा भी मेरा। भक्ति मार्ग में हमने भगवान के साथ बहुत ठगियां किया। मंदिर में गए तभी जाकर के बोल के आए उसको, जो मेरा है वो सब कुछ तेरा है, और घर में आए तो जो तेरा है सो भी मेरा है, जिसके कारण दुखी और अशांत हुई है। परंतु अभी जो हमने ईश्वर अर्पण कर दिया, उसका जवाबदार वो है, मैं नहीं। इतना बड़ा बेगरी पार्ट चला, 350 भाई बहने थे यज्ञ में, परंतु बाबा बिंदास्त था। आज अगर किसी का हम देखते हैं कोरोना के इसमें कैसा लोगों की हालतें हुई, हाँ, किसकी नौकरियां छूट गई, किसके पगार कमती हो गई, किसको पगार नहीं मिले, कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया, कितने डिप्रेशन में चले गए। अरे हमारी प्रवृत्ति कैसी चलेगी, हमारी गृहस्थी कैसी चलेगी? परंतु ये 350 घर में है और एक दाना अनाज का नहीं है, बाबा बड़े आराम से बैठा। क्यों? ये यज्ञ शिव बाबा का है, ये बच्चे शिव बाबा के, ये भंडारा शिव बाबा का, भोलेनाथ का भंडारा कालकंटक दूर, तेरा भंडारा भरपूर और कालकंटक दूर। 11 बजे आती है भोजन पकाने वाली पूछने को, बाबा क्या बनाना है, कुछ भी नहीं घर में, ना दाल है ना आटा है ना रोटी है, कुछ भी है नहीं है, सब्जी है। बाबा बोलता है 12 बजे आना, 11 बजे आना, 10 बजे आती है। अभी वो समझती है 11 बजे क्या होने वाला, 11 बजे बिगर नाम का मनियाडर आता है और बाबा बुलाता है खरीदारी वाले को, इधर आओ जाओ जाके दाल और आटा लेके आओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। वो जाके खरीद करके ले आता है, दाल भी बनती है, जितना पानी चाहिए उतना डालो दाल में, बढ़ती है, और रोटी भी बनती है। 12 बजे खाने की बेल बजती है, सभी बैठ के मजे से, मम्मा बाबा और सब बच्चे बैठ के खाते हैं। ये क्या है स्थिति? दो चीजें हैं, एक है स्वस्थिति, दूसरी है परिस्थिति। स्वस्थिति अंदर से आती है, परिस्थिति बाहर से आती है। परंतु हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का रास्ता अलग अलग है। स्वस्थिति का अंदर से आने का रास्ता है और परिस्थिति का बाहर से आने का रास्ता है। परंतु हम क्या करते हैं, स्वस्थिति के लिए जो समय देना चाहिए, स्वस्थिति के लिए जो शक्तियां लगानी चाहिए, वो हम परिस्थिति में उलझ के परिस्थिति में लगा देते हैं, जिसके कारण हमारी स्वस्थिति कमजोर हो जाती। तो जब स्वस्थिति कमजोर हो जाती है, शरीर में कमजोरी होगी, जरा हवा चलेगी तो भी बुखार आ जाएगा। तो स्वस्थिति की कमजोरी के कारण छोटी बात हमारे को बहुत बड़ी लगती। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं, तुम सेवा करो परंतु पहले स्व सेवा करो। स्व उन्नति और विश्व की उन्नति, इसका बैलेंस रख करके चलो, दोनों साथ साथ में होना चाहिए, तभी तुम्हारी ही शक्ति, तुम्हारे अंदर वो ताकत भरेगी, तुम हर परिस्थिति का मुकाबला कर सकेंगे। परंतु हम क्या करते हैं, सेवा में लगेंगे तो सेवा में ही लग जाते, अपना खुद का ठिकाना ही नहीं कुछ। बाबा क्यों कहता है, आप साथ में योग और साथ में सेवा, दोनों को साथ में रखो, कर्म योगी है तुम, कर्म भी करो परंतु योग में रह के कर्म करो, फर्क है बहुत। कर्म योगी का मतलब क्या है, योग में रह के कर्म करना, इसको कहते हैं कर्म योगी। परंतु हम क्या करते हैं, कर्म में रह के योग लगाते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, हम शुरू में तो याद कर लेते बाबा को, भोजन की बात ले लो, अभी हमने भोजन खाना चालू किया, बाबा कहता है मेरी याद में भोजन खाओ, हम शुरू में बाबा को याद कर लिया। फिर उसके बाद क्या होता है, भोजन खाते खाते बाबा भूल जाता है, सिर्फ भोजन ही याद रहता है। फिर जब याद, अरे बाबा भूल गया, फिर बाबा को याद कर, तो ये क्या हो गया, कर्म को हमने प्रधान दिया, प्रधानता दिया, कर्म को फर्स्ट रखा, योग को सेकंड रख। फिर उसका जो इफेक्ट होने वाला होगा वो होगा। गुलजार दादी हमेशा कहती थी, भोजन खाते खाते बाबा को भूल जाते, फिर माया ही बीच में भोजन खा जाती, तो क्या होगा, उल्टे संकल्प आएंगे, नहीं आएंगे उस हंस। हर कर्म में ऐसा करते हैं, कर्म कॉन्शियस बन जाते हैं सोल कॉन्शियस के बदले। परंतु नहीं, हमें बाबा को याद करके हर कर्म करना है। देवी देवताओं ने वो प्रैक्टिस की हुई है, अष्टरत्नों ने, इसीलिए उनके हर कर्म की पूजा है। तो हम भी बाबा की याद में रह के जब भी कर्म करते हैं तो क्या है, हमारे कर्म श्रेष्ठ बनते, ऊंचे बनते, हमको डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो हमारे को हमेशा स्वस्थिति का ध्यान रखना है। बाबा ने आज भी कहा ना, स्वराज अधिकारी, तुम मेरे स्वराज अधिकारी बच्चे हो। ये जो स्वराज है, ये सतयुगी राज से भी श्रेष्ठ राज। तो हमें अपने से पूछना चाहिए कि सचमुच मेरी कर्म इंद्रियों के ऊपर मेरा राज है, या कभी हम राजा बन जाते और कभी अधीन बन जाते। हम अधिकारी आत्माएं हैं, हम सर्वेंट नहीं हैं। अधिकारी आत्मा को अधिकार लेने में मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो तो नेचुरल होता है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। तो बात क्या है, क्यों समस्या फील होती है? क्योंकि स्वस्थिति की तरफ ध्यान नहीं। इसीलिए व्यर्थ संकल्प चल करके हम अपनी शक्ति को, एक तरफ बाबा को याद करते हैं, अपने अंदर शक्ति भरते हैं, दूसरी तरफ व्यर्थ संकल्पों में क्या करते हैं, शक्ति को लीक कर देते हैं। आज पानी की टाकी है, ऊपर से नल से पानी भर रहा है और नीचे अगर थोड़ा भी उसमें छेद होगा तो क्या हो जाएगा, वो सारा लीक हो जाएगा। तो एक तरफ बाबा को याद करो और दूसरी तरफ व्यर्थ संकल्प चलाओ तो शक्ति कलश हो गई, फिर कमजोर के कमजोर हो गए, जिधर के उधर ही रह गए। तो इसीलिए हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हमें व्यर्थ संकल्प नहीं उठाने हैं। व्यर्थ संकल्प नहीं उठाने हैं तो क्या करना है, उसके लिए बाबा ने हमें स्वचिंतन सिखाया, उसके लिए परमात्म चिंतन सिखाया, उसके लिए हमको ज्ञान का मंथन और चिंतन सिखाया। जितना जितना हम श्रेष्ठ चिंतन करते हैं उतना उतना व्यर्थ चिंतन बंद होता जाता है, स्वतः ही बंद हो जाता है और हम निरसंकल्प हो जाते हैं, शक्तिशाली बन जाते हैं। और जब शक्तिशाली बन जाते हैं तो हम किसी भी बात का मुकाबला कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो बड़ी समस्या है व्यर्थ संकल्पों की, कहते हमने कोई किसी विकारों के अधीन होके कोई संकल्प नहीं किया, उसको विकल्प कहते हैं, विकल्प नहीं आते हैं, परंतु व्यर्थ संकल्प, साधारण संकल्प। मम्मा ने इसी बात पर ध्यान दिया। शुरू शुरू में बाबा कहते थे, बच्चे अगर व्यर्थ संकल्प चले तो कोई बात नहीं, विकर्म नहीं होना चाहिए, मुख से कुछ उल्टा बोलना नहीं, मन में चला तो कोई हर्जा नहीं। पर मम्मा पहले दिन से बोलती थी, आप अभी छोटे बच्चे हैं इसीलिए बाबा ऐसा बोलता है, देखना यही बाबा एक दिन बोलेगा, अगर मनसा में भी चला तो भी उसका खाता बनता है, आज यही बताता है। मम्मा ने पहले दिन से खुद की तरफ ध्यान दिया इस बात का, इसीलिए मम्मा मम्मा बन गई, फर्स्ट नंबर आई। क्यों फर्स्ट नंबर आई? क्योंकि मम्मा ने कभी अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं किया, कभी उसने व्यर्थ संकल्प फालतू संकल्प नहीं चलाया, सदैव बाबा की याद में रही, सदैव ज्ञान के मनन चिंतन में रही, ऐसे मनन चिंतन में रही जो विद्या की देवी सरस्वती बन गई, इतना ज्ञान को जीवन में धारण कर ली। तो इसीलिए हम जो छूट दे देते हैं ना, फालतू ऐसा ही संकल्प चला, नहीं ऐसा ही संकल्प नहीं चलाना। और व्यर्थ संकल्पों का जो फोर्स होता है ना, वो बहुत फास्ट होता है, बहुत ज्यादा, एक बार चालू हो गए तो चालू ही होते रहते हैं। तो इसीलिए बीती सो बीती करो, आने वालों की, हमें आने वाले समय की हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा साथी भगवान, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, माया के आंधी तूफान उसको रोक नहीं सकते। तो दो बातों को अगर हम जीवन में धारण कर लेते हैं, साक्षी और साथी, ये जो बेहद का ड्रामा है इसको साक्षी होकर के देखो। संकल्प किसके ऊपर चलते हैं? औरों को देखने से संकल्प चलते हैं, औरों की कमी कमजोरियों को देख के संकल्प चलते हैं। बाबा ने हमें गुणग्राही दृष्टि दी है, आत्मिक दृष्टि माना गुणग्राही दृष्टि, क्योंकि हमें क्या बनना है, सर्वगुण संपन्न बनना है, सर्व अवगुण संपन्न नहीं बनना। तो हमको सब में से क्या देखना है, गुण देखना है। आप किसी भी व्यक्ति में गुण देखेंगे आपको उसके लिए स्नेह पैदा होगा, अवगुण देखेंगे तो उसके लिए नफरत पैदा होगी। इसीलिए बाबा ने कहा अपनी दृष्टि को क्या करो, गुणग्राही दृष्टि बनाओ। दो की हमेशा विशेषताएं देखो, हर एक आत्मा ज्ञानी चाहे अज्ञानी, हर एक में कोई ना कोई विशेषता है। दत्तात्रेय का मिसाल बताते हैं ना, उसने चेतन को भी गुरु बनाया तो जड़ को भी गुरु बनाया, कुत्ते को भी गुरु बनाया तो झाड़ को भी गुरु बनाया। गुरु का मतलब क्या है? शिक्षक। उससे गुण सीखा, उससे ईमानदारी सीखी, उससे झुकना सीखा। तो इसीलिए हम लोग भी अगर ये ध्यान में रखते हैं कि हमारे को हरेक के गुण देखने हैं, तो हम उससे क्या हो जाता है, हमारे व्यर्थ संकल्प बंद हो जाते हैं। नहीं तो साथ में रहते हैं, व्यवहार में आते हैं, फिर औरों की गलतियां जो है वो अपने चित्त पर रख लेते हैं। भक्ति मार्ग में मंदिरों में जाके भगवान को सिख्या देते थे, हे भगवान मेरे अवगुण चित्त पर नहीं धरना, भगवान को सिख्या देते। अभी वो दया का सागर हमारे अवगुण काय को चित्त पर धरेगा? अभी भगवान हमारे को सिख्या देता है कि हे बच्चे किसी के अवगुण चित्त पर नहीं धरना, नहीं तो तुम्हारा चित्त मैला हो जाएगा और मैला चित्त मेरे साथ नहीं लगे। जिसके अवगुण चित्त पर आते हैं ना, वो व्यर्थ संकल्प चलते हैं। और वही वही मन में घड़ी घड़ी चल गए, व्यर्थ चलने से हमारे अंदर वो बुराई आ जाती। बुराई को सोचेंगे तो बुराई आ जाएगी, अच्छाई को सोचेंगे तो अच्छाई आ जाएगी। और जिस समय योग में बैठेंगे ना, तो जिससे आपकी अटैचमेंट होगी वो भूत बन के आपके आगे पीछे घूमेगा, और जिससे आपको नफरत होगी ना वो भी छोड़ेगा नहीं, वो भी आपका गला पकड़ेगा उस समय आप। इसीलिए ना किसी से नफरत करो ना किसी से अटैचमेंट करो, सदैव न्यारा बनना सीख जाओ। तभी बाबा ने कहा ना, तुम इस समय पर क्या करते हो, इस समय पर तुम देह अभिमान का त्याग करते हो। देह अभिमान का त्याग करते हो कितनी बड़ी प्राप्ति हो जाती है, तुम्हारे सारा कल्प में तुम्हारा सम्मान बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो देह अभिमान है, देह अभिमान के कारण ये सब कुछ होता है। इसको छोड़ करके आत्म अभिमानी बनने की जो सीखा है बाबा की, उसको याद रखो, साक्षी होकर के इस ड्रामा को देखो, बड़ा आनंद आएगा आपको। हरेक का पार्ट अपना अपना है। ड्रामा का मतलब क्या? ड्रामा मीन्स वैरायटी। एक जैसे सभी ड्रेस पहन के खड़े हो जावे, एक जैसे चेहरे वाले होवे, एक जैसे बोलने वाले हो, आप कितना समय देख सकते हो? आपको बोर हो जाएगा दो मिनट में, आप बोलेगा ये क्या खेल लगा है तमाचा, अरे ये कोई ड्रामा होता है क्या? ड्रामा माना ही वैरायटी। तो ये वैरायटी ड्रामा है। हरेक का पार्ट अपना अपना है, और हरेक आत्मा अपना पार्ट बड़ा एक्यूरेट बजा रही, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्टर नहीं हूं। डायरेक्टर तो बैठे ना, वो करेक्शन देगा, आप ही मेरे को क्या करना। तो इसीलिए साक्षी होकर के पीछे देखो, साथी को सदैव साथ रखो, तो स्थिति जो है वो क्या हो जाती है, पावरफुल बन जाती है। कोई भी बातों में हलचल में हम नहीं आते, क्योंकि न्यारे हो गए ना। न्यारी चीज सभी को प्यारी लगती, खुद को खुद का जीवन भी प्यारा लगेगा, परंतु अगर दूसरों को देख देख के अपने को हैरान करते रहेंगे फालतू। आप देखो घर में भी दो चीजें होती हैं, एक होती है, एक हरेक के घर में होगा, वो एक आईना होगा, दूसरा क्या होगा, खिड़की होगी, विंडो होगी। आईने में किसको देखते हैं? खुद का चेहरा देखते, आईने में खुद का चेहरा देखेंगे, और विंडो में किसको देखते हैं? बार देख, बार क्या है? तो वैसा ही हम लोगों को टेव पड़ी हुई है बार देखने की, अंदर देखने की नहीं। अभी वो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, बार देखने के बजाय, दूसरे को देखने के बजाय अंतर्मुख होके खुद को देखे, मुखड़ा देख ले प्राणी, कितना पाप किया है, कितना पाप कट हुआ है, कितना पुण्य जमा हुआ है। तो जितना जितना हम अपना मुखड़ा ज्ञान के दर्पण में देखते हैं, उतना उतना क्या होता है, हम हमारे ऊपर जो दाग लगे हुए हैं उनको क्या कर सकते, पहुंच सकते। मुखड़ा इसीलिए देखा जाता है ना, कोई दाग तो नहीं है। माताएं तो उठेगी तो सीधा आईने के सामने जाती, मेरी बिंदी तो नहीं पहुंच गई, देखती हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है तुम बिंदियां लगा के रखो। स्थूल बिंदियों की बात नहीं है, स्मृति, स्व की स्मृति रखो, बाप की स्मृति रखो, ड्रामा की स्मृति रखो, फिर देखो तुम कितने शक्तिशाली बन जाते हैं, फिर तुम्हारे आगे कोई समस्या नहीं आएगी, आप दूसरों के समस्याओं का समाधान करने वाले बन जाएंगे, समस्या समाधान, नो समस्या। देखो ठीक हो गए, चलो ओम शांति।
ओम शांति। दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से उदाहरण दे करके कितनी सुंदर बात बताई कि कैसे हम समस्याओं का निवारण कर सकेंगे। जैसे कोई डॉक्टर होता है और उसके सामने खूब पेशेंट आए तो डॉक्टर को है ना, उसको खुशी होगी, हाँ आज खूब कमाई होगी। तो हम सब समाधान हैं, तो समस्याएं किसके पास आएगी है ना, जो समाधान करते हैं उन्हीं के पास तो आएगी ना, दूसरे के पास थोड़ी जाएगी। तो हमें भी खुशी होनी चाहिए है ना। समस्या आप देखो, आपकी मूर्तियां हैं, आप ये सोचो हमारी जड़ मूर्तियां, हमारी जड़ मूर्तियों के सामने लोग जाते हैं समस्याएं लेकर के, और फिर उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती है, मन शांत हो जाता है, समाधान मिल जाता है। वो किसकी जड़ मूर्तियां? हमारी। और हम क्या? चैतन्य में। यदि हम चैतन्य में परेशान उदास तो क्या कहा जाएगा। तो बहुत सुंदर, जब हम अपने स्वमान में रहते हैं, श्रेष्ठ स्मृति में रहते हैं, तो समस्याएं समस्या लगेगी ही नहीं। तो अभी हम दीदी से कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे, और किसी के पास कोई प्रश्न है तो चिटकी लेकर के आ सकते हैं, नहीं तो यहाँ एक माइक रखा जाएगा, वो अपने प्रश्न पूछ भी सकते हैं। कई बार बाबा कहते हैं बच्चे आपके सामने कोई समस्या आए तो मुझे यूज करो, और बाबा यहां तक कहते हैं कि बच्चे बुलाए और बाप ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम मुझे यूज करो, मैं हर पल हर क्षण मदद देने के लिए तैयार हूं। लेकिन बच्चे कहते बाबा हमारे सामने परिस्थिति आई, समस्या आई, हमने बहुत याद किया लेकिन आपकी तो मदद मिली ही नहीं। कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि बाबा की मदद मिली नहीं, मैंने बहुत याद किया बाबा, ये समस्या आई है, मुझे इस समस्या से निकालो, कोई युक्ति सुझाओ, लेकिन बाबा की और मदद मिली नहीं। और जब और समस्या आई उसमें हार खा गए। तो ऐसा क्या करें कि कोई भी समस्या आए तो बाबा की मदद हमें मिल जाए?
अगर मदद नहीं मिली है तो इसका मतलब यही है कि जिस समय समस्या आती है उसी समय बाबा को याद करते हैं, हमेशा याद नहीं करते हैं। जब समस्या आती, भक्ति मार्ग में भी ऐसा ही होता है, जब समस्या आती है तभी याद करते हैं। अगर सदैव हम बाबा की हमें याद है तो बाबा बांधा हुआ है आने के लिए। एक मिसाल बताती, मेरा अनुभव बताती। एक बारी बहुत बरस पहले की बात है, मनमोहिनी दीदी थी, मेरे को दादियों ने एक सेवा स्थान पर भेजा, वहां पर कोई समस्या थी वो हल करने के लिए। परंतु कहा जाता है ना, करेला जो होता है वो सबके लिए कड़वा होता है, किसी के लिए मीठा नहीं हो सकता। जो समस्या पैदा करने वाले हो तो सबके आगे करेंगे, आपके आगे भी करेंगे, मेरे आगे भी करेंगे। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जो, क्योंकि मैं तो जो भी करती थी दादियों से पूछ के करती थी, तो दादी ब्रिजिंद्रा दादी जो थी, पहले वो महाराष्ट्र संभालते थे और वैसे भी हम उनके पास ही रहते थे, तो कोई भी बात अगर हम उनसे पूछते थे, देखो हमारी सिचुएशन कैसी थी वो बताती मैं, कोई बात होती थी तो हम ब्रिजिंद्रा दादी से पूछे कि दादी क्या करना है, दादी बोलती थी मेरे से क्यों पूछती हो, बड़ी दादी से पूछो। बड़ी दादी से मैं पूछती थी तो बड़ी दादी बोलती है तेरे को क्या हो गया, तू संतोष मेरे से क्यों पूछती है, तेरे पास इतनी बड़ी दादी बैठी है। अरे हम बोला ये बोले उससे पूछो, वो बोले उस, एक दो को कितना रिस्पेक्ट रखते थे वो। तो एक बारी जब मेरे को ऐसे स्थान पर भेजा, मैं वहां गई तो तभी उस समय उस जमाने में ये मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं थे, ट्रंक कॉल करना पड़ता था फोन करेंगे तो हम फोन कर रही थी, मेरे को कुछ गाइडेंस चाहिए था इसके लिए मैं फोन कर रही थी। बॉम्बे में फोन करूं तो वहां दादी को नहीं लगे, मधुबन में फोन करूं तो यहां दादी को नहीं लगे, तो मैं बड़ी मूंझ गई। हमारा जो टेलीफोन था ऐसा ऊपर, वहां का टेलीफोन ऊपर रखा हुआ था, खड़ा होकर फोन करना पड़ता था। मैं इतनी मूंझ गई, मेरे को लाइफ में पहली बारी और लास्ट मेरे को ऐसा अनुभव हुआ जैसा मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेली। वो बड़ी बैड फीलिंग है, अच्छी फीलिंग नहीं। मेरे को एक सेकंड वो फीलिंग आई कि मेरा कोई नहीं। मेरे को वो फीलिंग आई और मेरे को ऐसा अनुभव हुआ जैसा मेरे कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा। मैंने ऐसा मुड़ के देखा तो बाबा खड़ा था। मैं एकदम बाबा को देखा और मैं एकदम हल्की हो गई, मुस्कुराई, वो मेरा प्रॉब्लम हल हो गए। मतलब अगर हमारी सच्ची दिल है, हमारा उसके साथ ठीक कनेक्शन है, वो सदैव हाजिर। परंतु आप मतलब से उसको याद करते हैं वो नहीं होता है। मेरे को मनमोहिनी दीदी ने उसके लिए चांदी का ग्लास इनाम दिया था। वो काम मैं करके आई तो मैं बोला ये मेरा नहीं है इनाम, उसका इनाम है, उसने ही हल किया। तो मतलब ऐसे बहुत अनुभव, हमको बहुत अनुभव है ऐसे, बाबा कैसा समय के ऊपर आकर के मदद करता है। परंतु हमारी दिल साफ होनी चाहिए। दिल साफ है कहते हैं, दिल साफ तो मुराद हासिल। अगर दिल साफ नहीं है तो मुराद हासिल नहीं होती। ऐसा कभी याद नहीं करेंगे, जब भी समस्या आएगी तभी, भक्ति मार्ग में भी देव देव करते हैं ना, वैसा ये याद करे, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। वो मदद नहीं करेगा, वो भी बड़ा उस्ताद है, आप उसको इतना भोला नहीं समझ लेना। भोला नाथ नाम है उसका, पर इतना भोला नहीं है वो, कभी भी तुमको मदद उठ के करे। हम उसको मदद करते, वो ये उसकी ये भी कंडीशन है, जो मेरे को मदद करता है मैं उसको मदद करता हूं। हम उसके कार्य में हर कार्य में मदद करते हैं तो वो हमारे को मदद करता है, हम उसको मदद नहीं करते तो वो भी नहीं करता। ये बात
बहुत सुंदर दीदी ने बात बताई। पहली बात तो जब कोई समस्या आती है तो तब उस समय बाबा बाबा याद आता है और समस्या पूरी हुई बस, है ना। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि हम बाबा के कार्यों में कितना सहयोगी बनते हैं। जितना हम बाबा के कार्यों में सहयोगी बनेंगे उतना और लोग भी सहयोगी बनेंगे और बाबा का भी सहयोग मिलता रहेगा। तो ये दोनों बात हम ध्यान रखेंगे। दीदी जी, इसी से मिलता हुआ, यदि जीवन में समस्या चल रही हो, कोई परिस्थिति हो, बार बार असफलता हो रही हो, निराशा हाथ लग रही हो,
क्यों
कोई भी बात में बार बार असफलता हो रही हो, बार बार विघ्न आ रहे हो, समस्या आ रही हो, परिस्थिति आ रही हो, ऐसे ऐसे समय पर हम क्या करें?
देखो, वास्तव में देखा जावे तो सफलता जो है ये उन्नति के लिए सीढ़ी होती है, असफलता जो है ये उन्नति की सीढ़ी होती है। असफलता आने के बाद फिर हमने वापस कदम रखना चाहिए, वापस ट्राई करना चाहिए, आखिर हमको सफलता जरूर मिलती है। पुरुषार्थ करने वाले की कभी हार नहीं हो सकती। जो असफलता को देख करके शस्त्र फेंक देते हैं उनकी हार होती है, परंतु जो असफलता को देख करके आगे बढ़ते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। और घड़ी घड़ी विघ्न आते हैं, ये होता है, उसके लिए एक्स्ट्रा योग करना चाहिए, अपने अंदर ताकत भरनी चाहिए, तो बाबा की मदद मिलती है। फिर अगर हम बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं, कोई भी बात है हम नहीं कर सकते, बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं, बाबा वो ठीक कर देता है, आप ही ठीक कर देता है। परंतु थोड़ा उसके लिए हमारे को धीरज रखना पड़ता है। तुरंत छू मंतर नहीं होता है वो, हमारे को अपने योग की पावर को बढ़ाने की आवश्यकता है, सब ठीक हो जाता है।
बहुत सुंदर बात कि अगर हम खुद ही सोचते रहेंगे तो बाबा क्यों सोचेगा हमारे लिए, तो अपने मन को शांत करके बाबा पर छोड़ दे, एक बल एक भरोसा। जब भक्ति मार्ग में मदद मिलती है तो हम तो बाबा के डायरेक्ट बच्चे हैं, क्यों नहीं मिलेगी। योग के चार्ट को बढ़ाएं और अपने मन को शांत करके बाबा के ऊपर छोड़ दें। दीदी कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर ऐसे कोई पुराने स्वभाव संस्कार जिसको हम छोड़ना चाहते हैं, बार बार हम प्रतिज्ञा भी करते हैं, वायदा भी करते हैं, बाबा को लेटर लिख करके भी देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो संस्कार इमर्ज हो जाता है। ऐसी कोई परिस्थिति आती है, बातें आती है, वो संस्कार इमर्ज हो जाता है, तो हम क्या करें कि जो हमारा पुराना स्वभाव संस्कार वो इमर्ज ना हो।
उसके लिए तो हमारे जो आदि अनादि संस्कार है उसकी स्मृति में रहने की आवश्यकता है कि मैं कौन। आप देखो जानकी दादी को दो बातें याद थी, मैं कौन मेरा कौन, और कुछ भी याद नहीं था। मैं कौन माना मैं कौन सी आत्मा हूँ मैं कौन से घराने की आत्मा हूँ, मैं कौन सी कैटेगरी की आत्मा हूँ, मेरे ओरिजिनल संस्कार क्या है। तो जितना जितना हमारा हमारे आदि और अनादि संस्कार, हमारे अनादि संस्कार जो है हमारे गुण निजी गुण है आत्मा के वो, और आदि संस्कार सर्वगुण संपन्न देवताई गुण जो है वो, जितना जितना हम उनकी स्मृति में रहते हैं ना, तो ये जो हमारे पुराने संस्कार है ये धीरे धीरे चेंज होते हैं। परंतु इसके लिए हमारे को योग की बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, जिसको कहते हैं ज्वालामुखी योग, पावरफुल योग। पावरफुल योग करने के बाद ही वो जो संस्कार है उसको हम मिटा सकते, नहीं तो नहीं मिटा सकते। सिर्फ संकल्प करने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए योग करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा योग करना पड़ेगा, पावरफुल योग करना पड़ेगा। वैसा भी आप देखो जब इस सोने में से आलाएं निकालते हैं तो उसके लिए अग्नि बहुत तेज प्रज्वलित करनी पड़ती है, ऐसी ढीली अग्नि के ऊपर वो कभी उसकी आलाएं निकलती नहीं। तो हमारे अंदर से भी अगर ऐसे कोई संस्कार है उसको निकालने के लिए हमारे को खास मेहनत करनी पड़ेगी, इतना योग करना पड़ेगा तो उससे निकल जाएगी। और किसी की फिर कोई अनुभवी आत्माएं जो है उनकी मदद भी लेनी चाहिए साथ में, कि ऐसा होता है तो क्या करें, वो आप लोगों को बताएगी।
यस, बहुत सुंदर तीन बातें दीदी ने बताई। हाँ, पुराने स्वभाव संस्कार खत्म करना है तो पहली बात अपने आदि अनादि संस्कारों को सामने लाओ। कई बार अव्यक्त मुरली में आपने सुना होगा बाबा ने कहा पुराने संस्कार माना, वो तो आदि अनादि संस्कार, वो तो अच्छे संस्कार हैं आपके, वो तो मध्यकाल के थोड़े संस्कार है ना। तो जब हम अपने आदि अनादि संस्कारों को इमर्ज करेंगे तो ये मध्यकाल के संस्कार ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। और दूसरा योग बल, जितना योग बल होगा योग से ही कर्मेंद्रियां शांत और शीतल होती है। और तीसरा जो अनुभवी आत्माएं हैं वरिष्ठ सीनियर उनसे भी राय सलाह लेनी चाहिए। अच्छा, किसी ने लिख करके दिया है कि बाबा कहते हैं कि ये जो विकार हैं तुम्हें इन विकारों से आदि मध्य अंत दुख मिलता है। तो उन्होंने लिखा है कि मध्य और अंत तो समझ में आता है कि द्वापर और कलयुग में दुख मिलता है, लेकिन आदि आदि तो सतयुग, वहां कैसे दुख मिलेगा।
नहीं, ये रंग समझा है बाबा जो बोलता है कि ये काम विकार जो है ये आदि मध्य अंत दुख देता है। आदि माना गर्भ जेल में भी दुखी, गर्भ जेल में बच्चा कितना त्राही त्राही करता है, जब से विकार की पैदाइश होती है तब से गर्भ जो है वो जेल का रूप ले लेता है, तो वहां पर उसको सजाएं मिलती है, उस समय वो त्राही त्राही करता है आदि में, जन्म की आदि, ये जन्म की आदि मध्य अंत है, सृष्टि के आदि मध्य अंत नहीं। तो गर्भ जेल में भी वो त्राही त्राही करता है, हे भगवान तू मेरे को बाहर निकाल, मैं तेरे को याद करूंगा। और फिर बाहर आने के बाद क्या करता है, उस समय रोना चालू करा हूं तो वहां मैं यहां, फिर जैसे का वैसा हो जाता है। तो सारा जीवन भर भी विकारों के कारण दुखी होता है, और जिस समय आत्मा शरीर छोड़ती, मध्य माना सारा जीवन, और मध्य का अंत का मतलब है जब आत्मा शरीर छोड़ती है, तो बताते हैं 100 बिच्छू काटे इतना दर्द उस समय उसको होता है, क्योंकि ममता होती है ना शरीर में। तो आप वो मृत्यु भी दुखमय हुई, जन्म भी दुखमय हुआ, गर्भ भी सब दुखमय, जीवन भी उसका दुखमय हुआ। तो ये जीवन की आदि मध्य अंत दुख मिलता है, और सत्योग में गर्भ मैल होता है, वहां दुख नहीं होता है, क्योंकि काम विकार नहीं।
जी तो सुंदर क्लियर हो गया ना, इसी जीवन की बात है ना, कोई सत्युग की बात नहीं, वो तो है ही है सुखधाम, वहां तो दुख का नाम
नहीं है। द्वापर की भी बात नहीं है,
द्वापर की भी बात नहीं है, लेकिन इस पूरे जीवन जब जन्म है ना, जन्म के पहले और मृत्यु के समय इस प्रकार से आदि मध्य अंत।
एक भाई था हमारे पास, बोला आदि मध्य अंत दुख है। देखो बहन जी, उसने देखो कैसा अर्थ निकाला, बोला सवेरे जब भी घर में उठते हैं तो झगड़ा चालू हो जाता है, आदि में दुख, फिर ऑफिस में जाएंगे तो ऑफिसर डांटता है, उधर दुख, फिर घर में आएंगे तो वही झगड़ा, फिर वही दुख, तो आदि मध्य अंत दुख। अरे कोई अपना अपना अर्थ निकाल,
एक दिन में ही उनका आदि मध्य अंत हो गया। और किसी ने लिखकर भेजा है, और कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे तो आ सकते हैं। किसी ने लिखकर भेजा है कि बाबा, आज भी बाबा ने कहा जो हुआ वो अच्छा हुआ, परंतु कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, ऐसी कोई समस्या, कोई नुकसान हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ घाटा हो गया, तो उसमें नहीं समझ में आता कि ये अच्छा कैसे हुआ, इसके पीछे का राज क्या है।
देखो समझो, किसी ने क्रोध किया, क्रोध किया और मैंने चुप कर लिया, मैंने कुछ बोला नहीं, मैं शांत रही, तो काम बुरा हुआ, अच्छा हुआ ना। उसने क्रोध किया और मैंने शांति को धारण किया, मेरा तो भला हो गया ना, मैंने अपनी स्थिति को अच्छा रखा, मेरे को तो सहन करने की शक्ति मिल गई ना, उसने क्रोध किया इसलिए तो मेरे को शक्ति मिली, ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ।
बहुत सुंदर। तो उसमें से भी हमें कुछ ना कुछ अनुभव सीखने को मिलता है। जी दीदी, दीदी कईयों का ये प्रश्न है कि हम यहाँ पर आते हैं और बहुत अच्छा लगता है, 3-4 दिन भट्टी करते हैं, बहुत सुंदर अनुभूतियां होती हैं, लेकिन यहां से जाने के बाद घर में भी यही सुंदर अनुभूति चलती रहे, उसके लिए हम क्या करें।
इसीलिए तो बाबा ने कहा है ना, तुम उसको घर नहीं समझो अपना, तुम उसको सेवा स्थान समझो। आप अपने को अपना घर समझते हो तभी आपकी स्थिति ऐसी होती है। आप समझेंगे ना, मेरे को ये बाबा ने निमित्त रखा है, किसके लिए, सेवा करने के लिए, तो ये मेरा सेवा स्थान है, ये बुद्धि में रहेगा ना, तो आपकी जो यहाँ स्थिति है वहां भी वो ही रहेगी, स्थिति बदली नहीं होगी आपकी।
जी कई बार बाबा कहते हैं
ये बाबा का घर है,
जी
तुम्हारा घर नहीं है, बाबा का घर है, बाबा ये भी बोलता है।
जी तो हम अपना नहीं समझे कि मेरा है, जहां मेरा है वहीं दुख है, वहीं समस्या है, बाबा का है। दीदी कई बार बाबा कहते हैं सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखो, लेकिन सामने वाला है जो बार बार विघ्न डाल रहा है, समस्या खड़ी कर रहा है, हमारी निंदा कर रहा है, ग्लानी कर रहा है, और हम अपनी भावना खराब नहीं करना चाहते, फिर भी हो जाता है, तो हमारी भावना ऐसे आत्माओं के प्रति भी खराब ना हो, शुभ भावना बनी रहे, उसके लिए हम क्या करें।
देखो वो जो कुछ करता है अच्छा नहीं करता है, हम समझते हैं ये रॉन्ग है उसका करना, पर उसके लिए अशुभ भावना रखना ये मेरा भी तो रॉन्ग है ना। अभी रॉन्ग के साथ दोनों भी रॉन्ग हो गए, वो भी रॉन्ग और मैं भी रॉन्ग, तो क्या होगा फिर, इसीलिए वो भले रंग करता है, उसके अंदर बुराई का इतना प्रभाव है जो अपनी बुराई को नहीं छोड़ सकता है, और मेरे पास जो अच्छाई है उस अच्छाई में तो शक्ति होती है, मेरे पास जो अच्छाई है उस अच्छाई को मैं उस बुराई के लिए छोड़ देती हूँ, तो उससे तो ज्यादा अवस्था मेरी खराब हुई ना, मैं वीक हुई ना, जो उसके बुराई का असर मेरे ऊपर हो गया और मैंने उसके लिए अशुभ भावना रख लिया, और उसके अंदर बुराई का इतनी ताकत है, बुराई की उल्टी ताकत, जो अपनी बुराई को हमारी अच्छाई उसके ऊपर काम ही नहीं कर रही। तो मुझे मजबूत होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ ना, मैं कमजोर हूं इसीलिए ये रिजल्ट निकले ना उसके।
तो शुभ भावना का तो फल मिलता ही है, लेकिन हम कई बार हम शुभ भावना रखते रखते थक बड़ी जल्दी जाते हैं। तो एक बार बाबा ने कहा कि थको नहीं, कुछ तो टाइम तो लगेगा, है ना, शुभ भावना।
अरे बाबा इतना 75 बरस से रोज समझाता है, आत्माभिमानी बनो मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, हाँ, कभी ये नहीं बोलता है मीठे खट्टे बच्चे, हाँ, उसको मालूम नहीं हम कितने मीठे हैं, मालूम है या नहीं बाबा को हम कितने मीठे बने हैं, फिर भी बाबा हमको मीठे बच्चे करके कैसा भी करके सुधारता ही है ना, हमारे पीछे मेहनत कर, बाबा थकता है फिर हम क्यों थक, तो बाबा को देखो ना, बाप समान बनना है तो बाबा को देखो, थको नहीं।
बहुत सुंदर बात, हम हैं किसी को एक बार समझाएंगे, दो बार समझाएंगे, तीसरी बार उसको डांट लगाएंगे, आपको समझ में नहीं आता है क्या, बार बार बताना पड़ता है, लेकिन बाबा रोज मीठे बच्चे बोल करके हमें मीठा बना ही देता है।
बनाएगा, छोड़ेगा नहीं, हो बोलता है नहीं मैं सबको साथ में लेके जाऊंगा, नहीं चलने वाले हो गए तो नाक कान से पकड़ के भी लेके जाऊंगा, सबको लेके जाऊंगा।
जी जी दीदी, दीदी बाबा कहते हैं बार बार कि घर गृहस्थ में रहते कर्म और योग का बैलेंस रख करके चलो, बाबा कहते तुम कोई 2 घंटे के योगी या 2 घंटे के सेवाधारी नहीं, लेकिन तुम निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी हो, तो हमारा कर्म और योग का संतुलन बना रहे, सुंदर बैलेंस रहे, उसके लिए हम क्या ध्यान दें?
उसके लिए क्या ध्यान दें, ध्यान तो देना पड़ेगा, ध्यान के बिगड़ तो चलेगा नहीं, कर्म और योग, कर्म भी करते रहो योग भी लगाते रहो, क्योंकि ये ध्यान में रखो कि हमारी योगी जीवन है, हम योग लगाने वाले योगी नहीं है, योगी जीवन वाले हैं, जीवन ये सदा काल की होती है, 2-4 घंटे की नहीं होती है, तो जिसकी जीवन ही योगी है तो उसका योग तो लगा ही रहना चाहिए ना, कि कर्म करे या नहीं करे, कर्म के बिगड़ बैठा हुए तो भी योग तो लगा ही रहना चाहिए, तो जो जिनकी जीवन योगी जीवन है उनके कर्म ही सेवा करते हैं, हमको करने की जरूरत नहीं, खास सेवा भी करने की दरकार नहीं है, आप बैठे रहो, आपके वाइब्रेशन सेवा करते हैं, आपके नयन सेवा करते हैं, आपका चेहरा सेवा करता है, सब सेवा कर।
बहुत सुंदर, तो कर्मयोगी बनने के लिए हम कोई 2 घंटे या 4 घंटे नहीं, लेकिन हमारा जीवन ही योगी जीवन है ना, हम उस स्मृति में रहेंगे कि हमारा जीवन ही पूरा, तो चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते बाबा के छत्र छाया की अनुभूति।
बाबा ने आज कहा ना, देखो लौकिक बाप 1 जन्म के लिए प्रॉपर्टी देता है उसको नहीं भूलते तुम, और बाबा देखो कितनी बड़ी प्रॉपर्टी तुमको 21 जन्मों की प्रॉपर्टी देते हैं उसको भूल जाते हैं। खुद को समझा क्या होता है, बातें सुनते हैं तभी अच्छा लगता है, पर वो जो बातें हैं ना घड़ी घड़ी अंदर में रिवाइज करो, जब तक ज्ञान को रिवाइज नहीं करते ना तो रियलाइजेशन की शक्ति नहीं आती, तो घड़ी घड़ी अंदर में चलता रहेगा ना वो, फिर वो प्रैक्टिकल में आ जाता है, नहीं तो हम सुनते हैं उस समय तो बड़ा मजा आता है, फिर उसके बाद सजा हो जाती है और कुछ।
कल भी बाबा ने कहा था ना कि जो सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन
हाजम करो, हाजम करो,
चिंतन करो। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, दीदी बहुत सुंदर आपने सार रूप में बहुत स्पष्ट उत्तर दिया, सार गर्भित उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत फिर से एक बार धन्यवाद।